अब इससे आगे एक लिस्ट है, आप देखेंगे बुक में भी बनी हुई है, अगर आप अपने पास अलग से नोट्स में एक 1 2 3 4 करते जाएं तो एक चेकलिस्ट बन जाएगी हम सबके लिए कि जिन गुनाहों पे नबी सल्लम ने दुनिया में सजा आने की वईद सुनाई, बात वाज़े, हर गुनाह बबाल है, आखरत में तो हो गई, कुछ गुनाह दुनिया में भी तकलीफें देते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहली बात, बहुत ज्यादा दिल को भारी करके सुनने और सुनाने वाली बात है, आम तौर पे सुनेंगे तो समझ कोई नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त इल्ला माशाल्लाह पूरी उम्मत का यही शुआर दिखता है, और वो क्या है? कुराने पाक के कुछ अहकामात को मानना और कुछ का इनकार करना। शायद आप में से कुछ की तवज्जो बट गई हो, मैं दोबारा बोलूं, आज यकीन करें उम्मते मुस्लिमा के नेक लोग, बद की बात नहीं करती मैं, वो तो बेचारे अभी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं ना, मैं नेक लोगों की, हाजी लोगों की, नमाजी लोगों की, हज और उमरे कर कर के आने वाले, मस्जिदों में चंदे देने वाले, मस्जिदों की टेक केयर करने वाले, दीन सीखने सिखाने वाले, दीन की दरसगाहों को चलाने वाले, जिस भी नेक से नेक काम करने वाले शख्स को तसव्वुर में ले आए, उनका मसला क्या है? कुरान के कुछ अहकाम को मानना, कुछ को छोड़ दो। दलील आपके सामने लिखी है, आयत का नंबर तो मुझे इसका जुबानी याद है, क्योंकि ये तो मेरे दिल का दर्द है कि उम्मते मुस्लिमा का आज मसला क्या है। सूरत बकरा आयत 85, अफतु मेनू नबी बादिल किताबी व तकफुरू नबी बात, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते और कुछ को नहीं मानते? अगर आपके पास वक्त हो ना तो इस आयत की तफसीर जरूर सुन ले, ऐप के ऊपर भी मौजूद होगी, वेबसाइट पे भी है, आप बस इन आयतों का नंबर डालें, सबीलुल जन्ना या नूरुल कुरान सेट, जो भी, जा किसी और की भी सुन ले, आई डोंट माइंड, लेकिन इन आयतों को पढ़कर मैंने जब भी पढ़ाई, हालांकि ये यहूद के हालात पे तबसरा है, कुरान में अगर देखें अल्लाह ने उनको 4 अहकाम दिए थे, उनमें से 3 तो पसे पुश डाल देते थे क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी, चौथा हुक्म जिसमें नुमाइशी नेकियों का मौका मिलता था और वाह वाह होती थी और आगे आगे होने का मौका मिल जाता था, तो वो फटाफट जाकर चंदा देकर अपने साथियों को छुड़ा लेते थे, उस पर ये कमेंट आया था। ये आप पढ़ें तो आयत 85-86 दोनों सूरत बकरा में ये मौजूद है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का नासूर है ये, मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगी। हम सोचते हैं आज मारूफ कर दी गई ये बात कि पूरे दीन पे अमल नहीं हो सकता, आपने ये जुमले भी सुने होंगे, आज के दौर में ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं अपने नबी को कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, सूरत मायदा की शुरू की आयतें हैं अगर आप पढ़ लें, कि आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया, यानी अल्लाह ने दीन पूरा दिया। आप मुझे बताइए, क्या कोई उस्ताद, मैं मिसाल से सिर्फ बात समझाना चाहती हूँ, हालांकि अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, एक उस्ताद है पूरी किताब आपको पढ़ाता है, फिर उस किताब के अंदर से आपका टेस्ट ले लेता है, कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि आपने तो ये बताया ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं, इस बात पे तो अमल हो ही नहीं सकता, ये 2+2 का तो हमें कुलिया समझ ही नहीं आता। ना समझ उस्ताद कौन सा होगा कि जो बात पढ़ाए ना उसमें से जवाब मांगे। बस इस वक्त आज हम इस बुक के 100 पेज पे हैं और मैं आपसे सवाल पूछ लूं कोई 225 नंबर सफ़े का, तो मेरी नाअहली होगी, आप मेरे आगे बोलेंगे तो नहीं, आप इज्जत भी करेंगे, आप लिहाज भी रखेंगे, दिल में सोचेंगे देखें जरा वो सवाल कर रही हैं जो बताया ही नहीं है, बात समझ आती है ना। अल्लाह सुबहान तआला जब कहता है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तो पूरा है, और अल्लाह के नबी का जो दीन है, याद रखिए ये सिर्फ अरबों के लिए नहीं था, ये अजमों के लिए भी है, ये 1400 साल पहले भी था और ये 1400 साल बाद भी होगा अगर क़यामत ना आई, इसमें चूं चरा नहीं हो सकती। लेकिन आज के दौर में ये नाम लेना कि सब बातों पे तो अमल नहीं हो सकता, इसकी सिंपल मिसाल फिर हमारी शादी, असल शादी क्या होती है? इजाबो कबूल, लड़की का बाप और लड़का, याद रखिए ये जुमला, शादी लड़की और लड़के के बीच में नहीं होती, शादी जब हो रही होती है ना तो लड़की का बाप और लड़के के बीच में गिरा लगती है, बियदि उकदतुन निकाह, लड़की का बाप ओके करता है, अपनी बेटी से इजाजत लेके करता है, हाँ शादी होगी, अब उसके बाद लड़के लड़की का डायरेक्ट मामला है। आप बताइए कि क्या है वो जुमले, मिसाल है कि शादी हो गई, आज शाम को शादी का फंक्शन है और सूफी साहब अवेलेबल ही नहीं है, मौलवी साहब कोई भी नहीं मिल रहा, एक फोन क्यों नहीं कर देते लड़की के बाप को लड़के को कि कोई बात नहीं, ये इतने 2-4 जुमलों से फर्क क्या पड़ना है, भेज दो बेटी को ऐसे ही, सच बताएं कोई एक बाप भी भेजेगा? फर्क किस बात का? मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह, सिर्फ ये दो बोल हैं, इससे पहले लड़के लड़की को इकट्ठे देखो तो चार उंगलियां उठेंगी, और शादी के बाद अलग रहेंगे तो लोग पूछते हैं इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे। ये सिर्फ चंद बोल है, कबूल है कबूल है, ये है ना कुरान का एक हुक्म, इस्लाम का एक हुक्म, निकाह है कर दिया, ये तो मान लिया, तो बाकी शादी के 95% जो काम है वो क्या है? सिर्फ निकाह के चार बोल ना पड़े तो शादी ना करे कोई, तो ये जो बाकी चीजें, अफतु मैनू ना बिबा दिल किताबी व तक फुरू ना बिबा। और मैं सोचती हूँ ये इतनी मोटी बात है, ये 2+2 बात है, कम पढ़े लिखे को भी जमा का पहाड़ा तो आता ही है, ये बात आज हम इतने इंटेलेक्चुअल्स को समझ क्यों नहीं आ रही? कुछ हुक्मों को मानना, कुछ को तोड़ देना। आप देखिए, सिर्फ खाना पकाते हुए केक बना लें, आप तरकीब या रेसिपी जो है उसकी कुछ चीजें डालें और कुछ ना डालें, कुछ को माने कुछ को ना माने, क्या रिजल्ट वही होगा जो एक अच्छे मजे के केक का होता है? टेम्परेचर ज्यादा कर दें वो केक नहीं, वो केक रस बन जाएंगे, टेम्परेचर कम कर दें वो केक नहीं बनेगा, वो खीर बन जाएगी, वो अंदर से पकेगा नहीं। 6 अंडों की जगह आप 24 अंडे डाल दें वो केक नहीं बनेगा, चीनी की जगह नमक, नमक की जगह मिर्चें डाल दें वो केक नहीं होगा। और कोई पूछे क्या हर्ज है तो आप कहते हैं मना भी तो नहीं किया, तो रेसिपी में मना थोड़ी किया था कि मिर्चे ना डालो, तो अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। ये सिर्फ एक फी जमाना मिसाल दे रही हूं कि हम सब, मेरा ख्याल है कोई हफ्ता ना भी कहूं तो कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि हमारे खानदानों में या हमारे मिलने वालों में कोई एक शादी का प्रोग्राम ना हो। वहां इस सोच को ले आए, या तो छोड़ दो निकाह को भी, जाने दो, इस ओके, इतनी क्या मुसीबत पड़ी है। और बाज अकल परस्तों ने इसका इनकार करना शुरू कर दिया। याद रखिए, जितना आप नकली चीजों को अपने इर्द गिर्द रखेंगे असली चीजों की कदर चली जाएगी। बस इसी को आगे लेकर आप जिंदगी के हर मैटर में देखिए, अल्लाह को इससे बहुत गुस्सा आता है। मैं एक बात करके आगे चलती हूँ क्योंकि अगली बात इससे भी ज्यादा शौर को बेदार करने की है। मैं यहाँ बैठी किसी को बुलाऊं इधर से, आप में से मिसाल है, मुझे कोई भी मिसाल है कि इधर कोई आयशा बैठी है, मैं कहती हूँ बेटा इधर आइए, मैं इनको आहिस्ता से कोई मैसेज दूँ, और ये बाहर जाकर रिसेप्शन पे बैठी, मिसाल है फरा नाम की एक लड़की है, मैंने कहती हूँ कि जाके वहां ये मैसेज दे दे, मेरी कही हुई बात में से आधी बात जो उनको गुस्सा दिलाने वाली या उनके खिलाफ पड़ती हो ये वहां जाकर बयान कर दें, और अगर मैंने उनकी कोई अच्छी बात की, कोई तारीफ की, वो ना इनको बताएं। बताइए बाहर बैठी फरा बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये क्या मेरे बारे में बात कर दी? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ट्रुथ्स, लिख लें, हाफ ट्रुथ्स जो होते हैं ना ये झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, अधूरे सच झूठ से ज्यादा तबाही लाते हैं। आज हमने आधा दीन देकर लोगों को, फिर मैं दीनदारों पे बात करूंगी जिसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ एक खास हद तक कि हम भी हैं तो दीन के ही नुमाइंदे ना, हमने लोगों को झूठी तसलियां देकर गुनाहों पे शेर कर दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, आज के दौर में कैसे हो सकता है, फिर भी ये तो करना ही पड़ता है। यकीन करें मैंने लोगों को देखा है आम हालात में जो उनकी जिंदगी है वो सुबह दीन, शाम दीन, रात दीन, कभी नमाजें, कभी तबलीग, कभी लोगों की मदद, कभी हकूकुल इबाद पूरे करते हुए दिखते हैं, माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छा गुमान है। बट जब उनके घरों में कोई खुशी का मौका आता है तो गर्दनें उनकी जमीन में घुसी होती हैं। बच्चों का नाम बच्चे नहीं चाहते, ससुराल का नाम, अच्छा लड़के वाले हैं ना तो कहेंगे लड़की वालों की मजबूरी है जी, हमने आज तक नहीं सुना था कि कभी लड़की वाले मजबूर हुए। सच बताइए, बात अच्छी है कि बुरी है, लेकिन हमारे इंडो पाक कल्चर में लड़के वालों का ही बात मानी जाती थी, सच है कि नहीं? ये बात लड़के की माँ का बड़ा रोब है, लड़के वाले ये चाहते हैं। आज लोग कहते हैं लड़की वाले नहीं मानते, ये मेरा बेटा नहीं मानता, ये मेरी बेटी को बड़ा शौक है, ये मेरे भाई का बड़ा शौक है, किसी एक को मोहरा बनाकर हमने करनी जरूर है नाफरमानी। तो फिर वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। ये सारी बातें मैं खोल के इसलिए बयान करती हूँ कि बाज दफा इशारे नहीं समझ आते हमें, आज के बाद जब किसी खुशी के मौके में जाएंगे ना तो ये मेरे लफ्ज याद कीजिएगा, अफतो मैनू ना भी बात दिल किताब भी बतक फुरू ना भी बात। अच्छा लोग कहते हैं शायद पूरा दीन मानने से जिंदगी बोझल हो जाती है, खुशी नहीं रहती। मसलन मैं एक जुमला बहुत सुनती हूँ लोगों से, हालांकि उसकी शरह में क्या गुंजाइश है मुझे नहीं पता, इस्लामी शादी, हम तो जी इस्लामिक शादी कर रहे हैं, हम जी शादी को सादगी से कर रहे हैं। सुने आपने कभी ये जुमले? ये जब कहते हैं ना कि हमने शादी बड़ी सादगी से करनी है, ये गलत जुमला है, एक जुमला बोल दें, यकीन करें दूसरा बंदा सर पटक जाएगा, लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं दे सकेगा। आज के बाद ये मत कहिए कि हमने अपने बच्चों की शादियां सादगी से करनी है, क्योंकि सादगी का मियार हर एक का फर्क है। किसी को कुछ ना करना सादगी लगता है, किसी को सब कुछ करके भी लगता है। अभी तो और बहुत कर सकते थे, ये भी सादगी है। एक जुमला बोले कि हमने अपनी बच्चों की खुशियां सुन्नत के मुताबिक करनी है। सुन्नत, वल्लाही सुन्नत में सादगी भी है, खूबसूरती भी है, उसमें फन भी है, उसमें इंजॉयमेंट भी है। ये जो हमने सोच लिया ना कि बोरिंग 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 शादी, ये बोरिंग नहीं होती। ये हमें अल्टरनेट देने नहीं आते। अभी शहर में हमारे किसी जगह साथी थे, तो अपने ही साथियों में तीन चार के बच्चियों की शादी थी, होने वाली थी। तो इन सारे साथियों ने मिलकर एक सिस्टर के घर पे प्रोग्राम किया, मुझे नॉर्वे से लिया, वो लोग सब अटलांटा में थे। बिलीव मी, मैं गई सिर्फ अपना 15-20 मिनट का सेशन देने थी, स्काइप से देख रही थी, आने को दिल ही नहीं कर रहा था। इतना इंजॉइंग, इतना मजे का, कहीं बच्चियों को नसीहतें, फिर कुछ वीडियोस दिखाई, क्विज खेले, फिर लव लेटर लिखने सिखा रहे हैं हस्बैंड के नाम पे। यानी अच्छा फन है। बच्चियां पहननी भी ओढ़ी भी, वो पहचान ही नहीं जा रहे थे लोग जो हर वक्त स्काफ और अबाय में होते हैं, क्योंकि औरतों की गैदरिंग थी। उन्होंने अपने कपड़े पहन के अपना शौक पूरा कर लिया। तो जब आप अपने जज्बात का इजहार जायज जगह कर लेते हैं ना, तो फिर आप नाजायज में नहीं करते कि अब ये कपड़े पहनने फिर कहाँ है। अब चलो पहनते, चलो साथ मैचिंग कर लेते हैं, दुपट्टा ले लेंगे, स्कार्फ ले लेंगे, वो इधर से ढकते हैं तो इधर से चुभते हैं, सारे दुपट्टा खोलते हैं। भाई जरूरत क्या है? आप क्यों मुजरिम बन के ऐसी जगहों पे जाएं? आप अपना हक लीजिए कि हमारा हक है, हमें लेडीज प्रोग्राम चाहिए, हम खाएंगे पिएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम अच्छे गाने भी गा सकते हैं बगैर म्यूजिक के। अगर बैठ के बच्चियां नसीहत कर देती हैं, कोई मेहंदी लगा लेती है, कोई हरज तो नहीं है। ये जुमले फिर मैंने जान के बोले हैं कि लोग ये ना सोचें आपकी बात से कि अच्छा भी शादी तो फिर ऐसे ही जैसे मरग वाले घर चले गए, नौजुबिल्ला। तो असल बात यह है कि जब दीन को उसके असल पे रखेंगे ना, हमने भी तो दीन पे एक झूठा लुबादा डाला हुआ है ना। सफेद दुपट्टा लेके पहुंच जाते हैं दीन वाली जगहों में, चिकन का जोड़ा रखा हुआ है हमने एक दरसों और मिलादों में पहनने के लिए। तो फिर अपनी खूबसूरती का इजहार, जो इंसान की फितरत में है कि वो साफ सुथरा लगना चाहता है, वो अच्छा लगता है, फिर वो जाके वहीं करेंगे ना जहां दूसरों को दिखाना पड़ेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये दो रंगी चाल खत्म कर दे। आधे तीतर आधे बटेर बन के खुशी नहीं होती। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। दूसरा नंबर अपनी लिस्ट में नोट कीजिएगा, कुरान करीम से एराज करना। एराज किसको कहते हैं? फ्रेंच में क्या कहते हैं भाई एराज करने को? एराज समझते हैं कि नहीं? उर्दू भी आती है कि नहीं? है, मुंह फेरना, मुंह फेरना। ओवरलुक, इंग्लिश में इसको ओवरलुक कहते हैं। यानी एक चीज मौजूद है और आप उसको मान नहीं रहे। सूरह तौहा आयत 124 है, वमन अरादा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जिसने मेरी किताब से मुंह फेरा तो बेशक इसके लिए तंग गुजरान है। मैं फिर रिकमेंड करूंगी कि इस आयत की भी तफसीर सुन सकें तो सुनिए। बिलीव मी, ये वो आयत है, ये और इससे अगली आयतें बहुत प्यारी हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को अंधा उठाएगा। वमन अरादा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनख़्शुरुहु यौम अल-क़ियामति आमा وقال يا ربي لما خشرتني اعمى وقد كنت بصيرا। अल्लाह ताला कहते हैं जिसने मेरी किताब से मुंह फेरा तो उसकी जिंदगी उस पर तंग कर दूंगा, और क्यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा। फिर वो उस दिन पूछेगा क्या मेरे रब, मैं तो देखता था दुनिया में, आज तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया? उस पर अल्लाह ताला कहेंगे कज़ालिका तत्का आयाती ना, आई थी तुझ पर मेरी आयतें, लेकिन तूने उनको भुला दिया, आज मैं भी तुझको भुला रहा हूँ। तो कुरान से राज आज दिखता। आज सुबह कहीं पढ़ रही थी कि ताकों में सजाया जाता हूँ, सुनी हुई आपने माहिरुल कादरी की पोइम, ताकों में सजाया जाता हूँ, और उसके आगे भी कुछ इसी किस्म की बातें। आज कुरान से एराज कितना है कि लोग डरते हैं, लोग उन महफिलों का रुख करते हुए डरते हैं जहां कुरान समझ के पढ़ा जाता है। बेसमझ पढ़ लें, जितने साथी आप बैठे हैं, मेरा ख्याल है जब से हम यहाँ बैठे हमने चार कुरान पूरे कर लेने थे। एक एक पारा 20 मिनट 15 मिनट में लोग पढ़ लेते हैं, मेरा ख्याल है बड़ी खुशी से। आप तुम यहां से उठते, हम कहते हैं आज 5 कुरान पढ़ के उठे, इसको तो लोग पढ़ लेते हैं सपारे सपारे करके, लेकिन उसकी एक आयत तो मनारादान जिक्री फाइन लहू मई शतन का, 1 घंटे में भी इसका हक नहीं पूरा होता। लेकिन कमजोर दिल वाले कुरान को नहीं समझ सकते। वो कहते हैं ना, कमजोर दिल वाले हजरात ये वीडियो ना देखें, कमजोर दिल वाले इन आयतों को ना सुने। वाकई ठीक है, और अगर आप इन आयतों की तफसीर सुन के देखते हैं, यकीन करें कि दुनिया में समझ आ जाता है कि ये आज इंसानों के साथ क्या हो रहा है। आज वाकई एराज है कुरान से, जाहरी तौर पे तो पुश नहीं दिखाते। बस लोग कहते हैं जहां कुरान पढ़ा होता है वहां पुश ना करो, पीछा ना करो, बैक ना करो, पाँव का रुख उधर ना करो। कितने मारूफ जुमले, अच्छी बात है। अगर अदब के नाते से आप ये काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, बंद किताब का तो अदब हम बहुत करें। और खुली किताब का इराज क्या है, फी जमाना बात जो मैंने खुद देखी भी और सुनी भी है, सारी शादी हो गई, रुख्सती का वक्त आ गया, ठहरो ठहरो ठहरो, वो किधर, वो कुरान किधर है, फिर वो गोटी लगा खूबसूरत जुजदान, उसमें सजा हुआ कुरान, लाओ लाओ बेटी के सर पे रखो, इसको कुरान के साए में लेके जाना है। और हमारे अपने खानदान में ये रिवाज है कि जब बहू घर आती है ना, पहले तो कुछ लोगों को देखा है कि चौखट पे तेल डालते हैं, ये क्या जी, ये बलाएं टलती हैं, ये किसने कहा, पता चला हिंदुओं से ये बात आ गई, फिर लड़की को बुला के बिठाते हैं सब, कुरान लाओ कुरान लाओ। चलो ये पहले होता था, अब कहाँ होता होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपनी मुमानियों और अपने जो हमारे करीब के लोगों की शादियां होती थी, तो बहू घर आई है सबसे पहले कुरान पढ़ेगी, ये तो अच्छी बात थी कि बरकत है, शुरुआत कर दी, लेकिन बाकी सब कुछ हम क्या कर रहे हैं। याद रखिए, कुरान हमारे जाहरी इन तकाजों को नहीं मानता, जब तक हम इससे नसीहत ना लें। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरत अंबिया आयत 50 में कुरान के लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहा है, वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अनज़ल ना हो, ये एक बाबरकत नसीहत है जिसको हमने नाजिल किया है। अब ये जो मईशतन जन का, मईशत तो समझते हैं ना, उर्दू में भी लफ्ज़ है गुजरान, लाइवलीहुड, और दन का कहते हैं तंगी को। मैं जब भी इस आयत की तफसीर पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ मईशतन दन का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो क्या बनेगा, डिप्रेस्ड लाइफ, डिप्रेशन। आज लफ्ज़ सुना वह, बच्चों को डिप्रेशन है, मैं हैरान होती हूँ माओं की भोलपने पर, कहती मेरा बच्चा बड़ा डिप्रेस है, छोटी छोटी बच्चियों से बात करूं क्या बात है ना, आई एम डिप्रेस। भाई डिप्रेस होता क्या है, तुम्हारी कैंडी खो गई है, कोई तुम्हारा लॉलीपॉप किसी ने ले लिया, तुम्हें डिप्रेशन क्या हुआ है, हमने तो कभी जवानों को भी नहीं था डिप्रेस देखा कभी। आप याद करें आज से 20-25 साल पहले, जिस घर में चार पांच बहनें होती थी, कह कहे ही नहीं खत्म होते थे, जहां बैठ गई लोग कहते थे चिड़ियां चहक रही हैं, बच्चियां कहां उदास होती हैं, मैयत वाले घर में हम देखते थे कि बच्चे हंस बोल रहे हैं और दूसरे रो रहे हैं, आज जवानों के चेहरों पर उदासी है। मैंने एक बच्ची से पूछा आपको मसला क्या, कहती आई हैव टू मच लोन, मुझे लोन पे करना है, मेरे सर पे कर्ज है, मेरे सर पे सूद है, मैं एक जॉब करती हूँ, सुबह पढ़ती हूँ, उधर जाती हूँ, फिर वीकेंड पे करती हूँ। मैंने कहा तुम्हें मुसीबत क्या इतनी बड़ी, कहती लोन है। मैंने कहा लोन किस चीज़ का है, कहती असल में आई बॉट द हाउस, मैंने घर खरीद लिया। कुंवारी बच्ची, वल्ला ही मैं झूठ नहीं बोल रही, 20 साल की होगी, 22 की होगी, जैसी बच्चियां होती हैं, कहती मैंने घर खरीदा है। मैंने कहा आपने घर खरीदा है, आपने क्या आपके अब्बू ने, कहती नहीं मैंने पर्सनली खरीदा। मैंने कहा आप कहाँ रहती, कहती अब्बू के साथ घर में, मुझे पता था अनमेरिड है। किस्सा मुख्तसर, कहानी क्या निकली कि घर खरीद लिया है, और क्यों खरीदा है कि घर खरीदा होगा अपना होगा, फिर शादी होगी तो लड़के को पाकिस्तान से स्पॉन्सर करूंगी तो अपना घर दिखाऊंगी। मैंने ऐसी बातों में पूछा, मैंने कहा कितने का लिया आपने, कहती 3 मिलियन का, 3 मिलियन करोन का घर लिया। तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, तो मैंने कहा लोन कितने आप पे, कहती 3 मिलियन, व्हाट आई हैव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरा 100% लोन है, पता नहीं शुरू में 10,000 किसी ने दे दिए तो बाकी अब सारा, वो रोज चक्की की तरह पिस रही है बच्ची, और वो बकायदा क्लासों में आने वाली बच्ची थी, कहती दिल करता है आऊं लेकिन अब मैं वीकेंड में भी जॉब करती सुबह क्योंकि मेरे ऊपर लोन है। अब इतनी सी कुंवारी बच्ची को आप इतने कर्जों के बोझ में डालें, वो मुस्कुराएगी, मईशतन धन का, पहले स्टडी लोन खत्म नहीं हो पाते मुसीबत की वजह से, तो उसके बाद ये जॉब शुरू हो जाती है और सारी जिंदगी कर्जों के बोझ में बैठे, ये आज की लाइवलीहुड तो वाकई मईशतन धन का। बाप चार चार जॉबें कर रहे हैं, ओवरनाइट कर रहे हैं, वीकेंड की टैक्सियां चला रहे हैं, सुबह में जा रहे हैं, रातों में जा रहे हैं, क्योंकि जी किस्त देनी है। मैंने कहा इतने लोग अब आपके घर के कमाते हैं, अब तो पैसे बहुत होंगे, किसी सिस्टर से बात हो रही, कहती कहाँ, घर में पे चेक आने से पहले बिल आए होते। अब आप खुद सोचिए, मैं कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रही और ना मुझे इसका हक है ना मुझे शौक है, लेकिन ये सच है कि आज हर बंदे ने अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल किया है। यहां पढ़िएगा हाफिज इब्ने कसीर मईशत ज़नका की क्या तफसीर बताते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं कि इसके लिए दुनिया में तंगी है, इसके लिए ना इत्मीनान है और ना ही शरह सदर है। क्या ये सब कुछ लेके लोग खुश हो जाते हैं, जाहिर है जिसने काम करना उसको गाड़ी भी अलग चाहिए, उसको सेलफोन भी चाहिए। माँ थी, किसी की बात कर रही थी बेटी की जॉब की, तो मैंने कहा माशाल्लाह अब तो इसके पास बहुत पैसे होंगे, कहती एक पैसा नहीं बचता इसके पास। खुद वो बच्ची हमारे अपनी क्लास की स्टूडेंट है, तो कहती मेरी 40,000 करोन पे थी कुरान पे आने से पहले, लेकिन उस्ताजा मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं होता था, पहले ही मैंने कूपन ढूंढ ढूंढ के और अपने मैगजीन्स में और लिंक्स को सेव किया होता था कि इस दफा की पे आएगी तो ये कपड़ा खरीदना है, 2-2 4-4 हज़ार करोन के एक एक शर्ट मैं आराम से खरीद लेती थी। तो मईशत अज़म का तो होगी। लोग उसे पूछते थे, क्योंकि लोगों को पता था वो अपनी जॉब छोड़ के आई थी क्लासेस में, तो लोग उसे पूछते थे कि सुनाओ पहले तो तुम्हारी इतनी बड़ी जॉब थी, और किसी हॉस्पिटल में वो ओल्ड होम में नर्सिस की काम करती थी, यानी बहुत पेफुल जॉब थी। तो कहती यकीन करें कि पहले पैसे कोई नहीं थे होते, अब फिर भी होते हैं। हुआ क्या, ख्वाहिशों की लिस्ट छोटी हो गई है। ना बाजार गए, ना मॉल में गए, ना कुछ देखा, बिजी इतना हो गए, और वो कहती अब ज्यादा पैसे हैं, पहले कोई नहीं थे होते। और फिर कहते हैं कि इसकी गुमराही की वजह से इसके सीने में तंगी और घुटन होती है, जब तक इसका दिल हिदायत और यकीन को नहीं पाता, वो जाहरी आसाइश, मन चाहे लिबास, खुराक और रिहाइश के बावजूद, है ना ये सब कुछ आज लोगों के पास, इस सब के बावजूद कुलक, हैरानगी और शक में मुब्तला रहता है, और ये सूरत हाल मईशत की तंगी से है। कोई एक जुमला भी बोलने की जरूरत है इसके ऊपर? इट्स वेरी क्लियर। आज दुनिया में हमें अमूमन यही चीज अपने इर्द गिर्द दिखती है, सामान्य आसाइश बहुत है लेकिन आसाइश नहीं मिल सकी। नरम गद्दों पे भी लोग नहीं सो पाते क्योंकि दिलों को घुटन है। आप देखिए ना, दिल को गम लगा हो तो बंदे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाने को दिल करता है, ना पहनने को, ना उड़ने को। हजरत इब्ने अब्बास इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। कहते हैं अल्लाह ताला इस शख्स के जामिन हुए जिसने कुरान मजीद पढ़ा और इसमें जो कुछ है उसके मुताबिक अमल किया, कि वो दुनिया में गुमराह नहीं होगा और आखरत में बदनसीब नहीं होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने यही आयत पढ़ी। क्या आप में से जो साथी हकीकत में कुरान के साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे, यकीन करें कि ये बात सच है? अल्लाह जिम्मेदारियां लेता है, दिल में ख्वाहिश बाद में आती है, चीज आपके हाथ में पहले आती है। लोग मारे मारे फिरते हैं, जिनका गम हम वही बनेगा वो चीज अल्लाह ताला, ऐसे लगता है कि अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया। बास दफा तो आप डर जाते हैं कि क्या मैंने ये जुमला बोल दिया था किसी के सामने? नहीं, वो बिज़ाते सुदूर, वो दिलों वाला मालिक जो है ना, वो लोगों के दिलों में डाल देता है। इतनी बेकदर और हकीर होके दुनिया आपके पास आती है, और फिर दुनिया तो एक नकद है, आखिरत में तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो रखा होगा वो है। एक महीना अपने आप को दें, चले महीना लंबा लगता है, नहीं एक हफ्ता। ये बुक हमसे ये तकाजा करती है, हमें दूसरों की फिक्र नहीं, हम बात तो इज्तमाही करते हैं लेकिन आपने कोशिशें इनफरादी करनी है। आप अपने लिए गोल बनाएं कि मैंने अपनी जिंदगी की मुसीबतें खत्म करनी है, तो एक एक करके चुनते जाएं और अल्लाह से बातें करें, अल्लाह जी ये मैं गुनाह अपना छोड़ रही हूँ, ये आदत छोड़ रही हूँ, ये खराब बात है, बस आप मुझे इसके बदले में दिखाएं दुनिया में कि मेरी जिंदगी में कैसे सुकून आता है। और वाकई ये बात कहने की नहीं है, ये करके महसूस करने की है। तीसरी चीज लिस्ट में डाल दीजिए, मस्जिदों में जिक्र इलाही से रोकना और इनकी बर्बादी के लिए कोशिश करना। सूरत बकरा आयत 114, वमन असलम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह युस्करा फी हस्मुहु वसा फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद्दुनिया हिज्जुन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे कि इनमें इनका जिक्र किया जाए, यानी अल्लाह ताला का, और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हक नहीं है क्या कि उनमें दाखिल हो मगर डरते हुए। इन्हीं के लिए दुनिया में बहुत बड़ी रुसवाई है और इन्हीं के लिए आखरत में बहुत बड़ा अजाब है। ये आयत भी आप में से अक्सर ही लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि पहला सपारा अक्सर लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिरका बारियत की बात है, यानी अगला जुर्म क्या है कि मस्जिदों को वीरान करना, मस्जिदों को बर्बाद करना। अगर आयत की शान में देखें तो यहां शान नजूल तो आपको सुलह हुदैबिया का मिलेगा कि कैसे मुसलमानों को मक्का में आने से रोक दिया गया और हुदैबिया के मुकाम से वापस जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने वो वादा कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया। सूरह तौबा आयत 28 में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजस, कि ये मुशरिक जो आज काबा के चौधरी बने हुए हैं और आपको मक्का में आने नहीं दे रहे, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। सन 6 हिजरी में रुका था और 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। सिर्फ 2 साल के बाद हालात क्या हो गए कि अल्लाह के नबी वहां फातह बन के गए और 1 साल मोहलत दी गई उनको। सन 9 हिजरी में सूरह तौबा नाजिल हुई और कह दिया कि इन्नमल मुश्रिकूना नजस, कि आज सिर्फ 4 महीने की मोहलत है, इन 4 महीनों में या तो हत्ता यस्मा कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम सुन के इस्लाम कबूल कर लें, या मुआहदे इनके पूरे करो और आज के बाद वो नहीं आएंगे। आज भी आप देखते हैं खाना काबा की हदूद में कुफार नहीं आ सकते, तो ये आयत का वादा सच्चा हो गया। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मस्जिदों की वीरानी से रुको। अब यहाँ बात जो फी जमाना करने की बहुत ज़रूरी है, मैं अक्सर सोचती हूँ और मेरी गुफ्तगू में भी अक्सर लोगों को ये रंग दिखता ही होगा, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है कि दुनियावी एतबार से यानी लाइवलीहुड में हम शादी ब्याह खुशी गम के मौके पे परेशान करते और अपना दीन बिगाड़ते हैं, और दीन के नाम पे जो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा परेशान करने वाला अमल है ना, वो फिरकावारियत है। क्या आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे? यानी दुनियादारों को हल में मजीद और एक्सपोजर और सेलिब्रेशंस ने मार दिया, और दीनदारों ने मसलक जमात गिरोह फिरका किधर से किसके पड़े, किधर हैं आपकी निस्बतें, किधर हैं? याद रखिए, काफिर हमें सिर्फ एक नाम से जानता है और वो मुसलमान है। जहां गोली चलती है वो मुसलमान लफ्ज पे चलती है, जहां मुसलमान पे पाबंदी लगती है वो मुसलमान पे लगती है, लेकिन आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया फिरकावारियत की बातें कर करके, जमातबंदी की बातें कर करके और आपस के झगड़े। लोग नमाज के लिए जाते हैं और जुम्मे के लिए भी जाते हैं, मगर कब? जब मौलवी सब थक चुके होते हैं। वो कहते हैं जाके बैठना के, ये तो उनके खिलाफ बात करेंगे, वो उनके खिलाफ बात करेंगे, और ऐसी ऐसी जगह आज मुसलमानों की मौजूद हैं कि एक राउंड अबाउट है, एक इधर मस्जिद है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। और कहने और सुनने वालों ने बताया कि जुमे के दिन चारों के मिंबरों का वहां इजाजत है, जिस जगह की ये बात है कि जुमे के दिन आप अपना खुतबा बाहर दे सकते हैं। कहते हैं उनके मिंबर से उनके खिलाफ और उनके उनके खिलाफ बातें होती हैं, और बाज दफा तो वो कहते हैं कि चढ़ो खती में नमाजों के टाइम ही ऐसे वक्तों पे रखते हैं कि इधर नहीं है तो उधर आए, उधर नहीं है तो इधर आए, जो हम पहले रख लेते हैं लोग जल्दी ज्यादा आएंगे तो इधर करें। यानी ये कोई दीन है? मैं जो यहाँ बैठी, आप देखिए हम तकरीबन 1 घंटे से बात कर रहे हैं, 53 मिनट हुए हैं, हमने कितनी बातें सीख ली। तो अगर मैं यहाँ आकर बैठ के सिर्फ ये फिरका वाराना बातें करती रहती, आपका मसलक आपकी जमात, तो आप मैं यहाँ से लेके क्या उठते कि आप कल आएंगे? आज मस्जिदों की बर्बादी की बहुत बड़ी वजह यह है कि मस्जिदों को चलाने वाले नंबर एक मुतस्सब हो गए अपनी जमात का ना, दूसरी बात है थुड़दिले हो गए, वुस्सत कल्बी ना रही, उनके दिल इतने तंग है, वो कहते सिर्फ मैंने जन्नत में जाना है। वो एक मैंने बात कहीं पढ़ी थी तो सुनाई भी थी कि दो लोग बैठे हुए थे, एक ही मसलक के थे, वो दोनों दीनदार डिस्कस कर रहे थे दूसरे दीनदार गिरोहों को, कहने लगे वो, अब नाम मैं नहीं लेती, देखें वही लिए होंगे ना जो अमूमन मारूफ हैं कि देवबंदी हनफी शार और जो भी आप कह लीजिए कि वहाबी और सुन्नी और शिया, तो कहने लगे वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो उनमें तो अकायद की खराबी है, वो तो बिदत बहुत करते हैं, वो बहुत करते हैं। यानी हर मसलक का नाम ले लेके उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल जन्नत में नहीं जाना, और दोनों एक दूसरे को इत्तफाक कर रहे थे। कहने लगे रह गए बात पीछे तू और मैं, हैं तो हम हक वाली जमात के साथ, पर तेरे दिल में मुझे निफाक लगता है, तूने भी कोई नहीं जाना। तो फैसला क्या था? आई एम माई सेल्फ, मैं हूं ना, बस मैं जाऊंगा जन्नत में। आपने अकेले जन्नत में जाके क्या करना है? हड़ताल होगी उस दिन, आपका दिल ही नहीं लगेगा, वहां किससे लड़े, किससे वैसे करे? तो याद रखिए दिल बड़े रखें। आज मुसलमानों को इन मिंबरों से, ये जहां हम बैठे हैं इन मिंबरों से मोहब्बत का पैगाम दे, दीन ना बदले। वो कहते हैं ना कि टाई अप, अपने आप को बांध लें, कुरान सुन्नत से जोड़ लें और दूसरों की रिस्पेक्ट करें, कभी किसी दीनदार का मजाक ना करें, कभी किसी का फन ना करें, कोई तबलीगी जमात से है तो कोई दावा से है तो कोई फलां से, मत उनके नाम ले लेके बदनाम करें, बस इस पे काफी हो जाएं कि अल्लाह का नाम लेने वाले और आप हक पे जुड़े रहे, दूसरे जो करते हैं अच्छे तरीके से उनको समझा दें, वरना मस्जिदें जो हैं वीरान होंगी।